Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
यहाँ तक कहते हैं कि ये बंधन और मोक्ष जो हम मानते हैं, मुक्त का लक्षण किया ना, अविद्या रूप बंध शून्यम. ज्ञानियों की दृष्टि में बंधन आदि तो है ही नहीं, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वही मुक्त इत्येषा परमार्थता. परमार्थता किसका नाम है, तो ये श्लोक आप लोग याद कर लेना. न निरोधो न च उत्पत्ति, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक. कोई बंधन में नहीं पड़ा है, कोई साधक भी नहीं है. लेकिन ये किसकी भाषा है, ज्ञानी की. ज्ञानी जब स्वयं मुक्त होता है तो उसके दृष्टि में सब क्या दिखाई देते हैं, मुक्त दिखाई देते हो. तो जब आप जाके प्रश्न करते हो कि महाराज हम बड़े संकट में हैं, हम दुखी हैं, तब वो आपको उपदेश देने लग जाते हैं. और यदि आप अपने बंधन के बारे में बताओगे नहीं और वो आपको मुक्त करने लग जाएंगे तो आपको क्या अनुभव होगा, कहेंगे क्या बोलते, मेरी समझ में नहीं आ रहा है. इसे तो कहते हैं जब जब कोई तत्व की जिज्ञासु बनकर के आवे तभी बोलना चाहिए. महापुरुषों को ऐसा है, और आप देखते ही होंगे, कोई भी महापुरुष बिना मतलब के नहीं बोलते. जब आप जाओगे जिज्ञासु बनके, श्रद्धालु बनके, जब आप पूछोगे तब वो जवाब देते. ये नहीं बोलते आओ भाई मैं मुक्त हो गया तुम्हें भी मुक्त करता हूं. क्योंकि आपके बंधन की प्रतीति जब तक आपको रही है तो हम भला कैसे मुक्त कर सकते हैं, ये भी एक जरूरी चीज है. अविद्या रूप बंध शून्यम, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कितने हो गए, चार. नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और साथ में जोड़ दिया स्वभाव. नित्य है स्वभाव जिसका, शुद्ध है स्वभाव जिसका, बुद्ध है स्वभाव जिसका, ऐसा मुक्त स्वभाव वाले. स्वभाव का अर्थ कर दिया स्वम एव भाव सत्ता, यस्य तम अनन्या धीन सत्ताकम. स्वम एव भाव सत्ता, स्वभाव. जब कोई व्यक्ति बोलता है ना कुछ, बोलते इसका ये स्वभाव है, अर्थात उसकी प्रकृति है. स्वम एव भाव सत्ता, यस्य तम अनन्याधीन सत्ताकम. परमात्मा की सत्ता से अपने सत्ता को अनन्य मानना, अलग नहीं मानना. जब आप बोलते हो मैं सुखी हूं दुखी हूं, ये हमारा स्वभाव नहीं है. स्वभाव तो यही है कि हमेशा क्या चाहते, जो दुख आया चला गया, हाँ अब ठीक हो गया. जब तक दुख रहता है तब तक बेचैनी बनी रहती है. रोगार्थस्यैव रोग निवृत्तो स्वस्थता. बिना बीमारी के कोई दवाई नहीं खाता, और बिना बीमार पड़े ही कोई दवाई खाए तो क्या होगा. या पहले कहो कि मैं बीमार पड़ना चाहता हूं, क्यों जी, पहले दवाई खाने की इच्छा हो रही है. ऐसा कोई, जब जब बीमार पड़ते हैं तब दवाई की इच्छा होती है. जब तक आप अपने अज्ञान से दुखी नहीं होते हो, जब तक आप अपने दुख की निवृत्ति के लिए उपाय नहीं सोचते हो, तब तक इसमें प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती. ये सिद्धांत बिंदु में मधुसूदन सरस्वती जी लिखते हैं कि ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है, जो हम लोगों का स्वभाव है, उसी को बोध कराने के लिए इस 10 श्लोकी का आचार्य ने प्रणयन किया, इसकी रचना की. अब कैसे विवेक करना है, विवेक करने का जो तरीका है, कहां पर घालमेल हो रहा है, ये भी सुस्पष्टीकरण हो जाएगा. ननु ननु कहकर के शंका उठा देते हैं. आप लोग प्रवचन भी सुन रहे हो, साथ में स्वाध्याय जैसा ही है, और जल्दबाजी मत करना. बोलोगे ये तो अभी अवतरणिका में चल रहे थे, श्लोक कब होगा. आप भी यही बने रहोगे और हम भी यदि यही बने रहेंगे तो आगे चलता रहेगा, चिंता मत करना. इदंकारास्पद, इदंकारास्पद का मतलब होता है इदम रूप से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है. इदम का मतलब होता है संस्कृत में यह, यह का मतलब हो गया दृश्य। यह किसको बोलेंगे? दृश्य पदार्थ को ही बोलेंगे। और जो जो इदम का आस्पद होगा, इदम के आश्रित रहने वाले पदार्थ, वे सब के सब अनात्मा कहलाते हैं। सब के सब क्या है? अनात्मा। अच्छा, हम लोग कई बार गड़बड़ भी करते हैं। जिस अनात्मा का हम नाम लेते हैं बार बार, विवेक करने के लिए तो ठीक है, आत्मा अनात्मा का विवेक करो, लेकिन अनात्मा को अनात्मा बनने के लिए भी आत्मा की जरूरत है कि नहीं? अनात्मा बोलेगा कौन? आत्मा वाला बोलेगा कि बिना आत्मा वाला बोलेगा? ये अनात्मा नाम की कोई चीज है नहीं देखा जाए तो। लेकिन जब भेद बुद्धि पैदा हो जाती है, देखो वेदांत पढ़ोगे तो आप क्या जानोगे? ये पूरा संसार परमात्मा ही है। और जब तक शास्त्र नहीं पढ़ते तब तक क्या बोलते हो? भगवान अलग है, संसार अलग है, इतने तो बात है। शास्त्र पढ़ने के बाद क्या विशेषता आ जाएगी? जिन चीजों को अभी तक हम अपने से अलग मानते थे, शास्त्र श्रवण करने के बाद, गुरु के मुखारविंद से उपदेश ग्रहण करने के बाद ये मालूम पड़ गया, संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमः। संपूर्णम जगद एव नंदन वनम, ये सब के सब क्या है? नंदन वन है, आनंद का वन है। जहां पर आनंद का समूह एक साथ उमड़ जाए उसी को नंदन वन बोलते हैं। इसलिए आनंद वन है ना, आनंद वन। आनंद वन का अर्थ होता है वन संभजने, वन भजने, और वन समूहे, जहां पर आनंद प्रचुर मात्रा में घनीभूत होकर के अनुभूति के रूप में आवे, उसका नाम क्या है? आनंद वन। और ऐसे आनंद वन में कौन बैठे हैं? भगवान शंकर सानंदम, आनंद के साथ बैठे। सानंद मानंद वने वसंतम, कैसे है तो आनंद कंदम, स्वयं आनंद के समूह है, स्वरूप है। और ये कब होगा? हत पाप वृंदम, जब सारे पाप राशि हत नष्ट हो जाए तभी उस आनंद का अनुभव होता है। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, वरुणा और अस्सी के बीच में बसी हुई नगरी का नाम है वाराणसी। वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, अब उसका नाम हम लोग बोल देते बनारस, और उसका असली नाम तो है काशी। काशी जो है काश्री दीप्तो, चकाश्री दीप्तो धातु है। काशी का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, काशी का मतलब होता है सत्स्वरूप, काशी का मतलब होता है चित्त स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप जो हो उसका नाम है काशी। कभी आएगा प्रसंग सुना देंगे, आचार्य शंकर ने काशी पंचक श्लोक लिखा है, पांच श्लोक में। तो सबसे पहले जो है, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशी विदिता ये न तेन प्राप्ता ही काशिका। काशी काश्याम ही काशते काशी, बनारस की ऐसी विशेषता है, वो ज्ञान भूमि है। एक अभी सज्जन मिले, बोले महाराज हम तो वृंदावन के रहने वाले हैं, और वृंदावन में आप जब भी आओगे तो ये ब्रजभाषी तो गाली भी मीठे मीठे ही देते हैं, और वृंदावन के लोग भक्ति प्रधान होते हैं, बनारस के लोग ज्ञान प्रधान होते हैं, और हरिद्वार के लोग वैराग्य प्रधान होते हैं। हरिद्वार में सब गंगा जी में अस्थि डालने के लिए जाते हैं, और बनारस में रिक्शा वाला भी एक दो श्लोक बोल के आपको सुना देगा, और की तो बात छोड़ो। और बनारस में रिक्शा वाले को बोलते हैं का हो गुरु चलवा, वहां रिक्शा वाले भी गुरु हैं। हर हर महादेव, ये वहां के जयकार है, जैसे वृंदावन में राधे राधे, सबके मुंह से वही है। तो एक क्षेत्र का अपना अपना महत्व होता है। काश्याम ही काशते काशी, काशी क्षेत्र में रहना, वहां शरीर छोड़ना और जीते जी ज्ञान प्राप्त करना जितना सुलभ है, इसलिए वो विद्या की नगरी है। काशी सर्व प्रकाशिका, और ऐसी विद्या जो सा विद्या या विमुक्त है, वहां पर वह ज्ञान मिलता है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तभी तो कह दिया काश्याम मरणात मुक्ति। काशी, ये काशी पंचक का श्लोक सुना रहा हूं आप लोगों को, आनंद वन की बात आ गई इसलिए प्रसंग छेड़ दिया। ऐसे आनंद समूह का एक साथ जब अनुभव होता है और इसमें अभी अनुभूति नहीं हो रही, उस प्रतिबंधक को हटाने के लिए हमें बार बार विवेक का आश्रय लेना पड़ेगा। वेदांत शास्त्र की प्रक्रिया है वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी, चित्तस्य शुद्ध है कर्म न तु वस्तु उपलब्ध है। ये सब उपाय बताया, कुछ करके ये मिलता है, जब तक आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा तब तक ये मिलने वाला नहीं है। भाई अपने को जानने के लिए शीर्षासन करोगे, वज्रासन करोगे, कौन से आसन लगाने से मैं ब्रह्म हूं जाना जाएगा? बोले मैं ब्रह्म क्यों नहीं हूं, मैं अपने को ब्रह्म के रूप में क्यों नहीं जान पा रहा हूं? जो प्रतिबंधक है उसको हटाने के लिए ही ये प्रवचन स्वाध्याय की आवश्यकता होती है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। ननु इदंकारास्पदेभ्यो अनात्मभ्यो, ये जितने भी अनात्म समूह है आत्मा की सत्ता में ही इनकी सत्ता है, उससे अलग नहीं है। फिर भी जो अभी घाल मेल है, पहले तो इसका विवेक करना है। विवेक कैसे करना है? तो संपूर्णम जगदेव नंदन वनम, ज्ञान हो गया तो अब तो आप जहां बैठे हो वहीं पर समाधि लग गई। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था प्रेमपुरी जाएंगे तो आनंद मिलेगा और प्रेमपुरी से बाहर जाएंगे तो आनंद नहीं मिलेगा। यहां इसलिए आनंद मिलता है, बढ़िया समाधि लगाने को मिल जाता है। विवेके न अहंकारास्पदम आत्मानम, अहंकारास्पद जो आत्मा और इदंकारास्पद जो अनात्मा, तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो हो। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य आप उठाकर देखें, जहां पर होता है अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, यह मैं हूं और यह मेरा है, जो मैं हूं उसको मैं नहीं मानना, किसी चीज को मिला करके। जब केवल अहम ब्रह्मास्मि बोलते हो तो वहां पर ये नहीं बोलते अहंकार ब्रह्मास्मि, हाँ इसका मतलब है अहम करोति इति अहंकार। और अहंकार आप कहां कर रहे हो? जो वस्तु आत्मा के आसपास आश्रित नहीं है, शरीर ले लो, मन ले लो, बुद्धि इंद्रिय, ये सब के सब क्या है? अनात्मा है। कल आप लोगों को बताया था भ्रम का जो मूल अधिक कारण है, एक तो असत्य जगत को सत्य मानना, जगत में सत्यत्व बुद्धि और अनात्मा रूपी जो शरीर है इसमें आत्मत्व बुद्धि। शरीर आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि नाशवान है। अभी आपने आत्मा का लक्षण सुना, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो। शरीर अशुद्ध है, शरीर अनित्य है, शरीर बंधन में पड़ा हुआ है, तो ये भला आत्मा कैसे हो सकता है? लेकिन हम क्या मान रहे हैं इसको, आत्मा मान रहे हैं कि अनात्मा मान रहे हैं? इसीलिए मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं चलता हूं, मैं तो आप सब में बोल ही रहे हो, लेकिन आना जाना जो लगा के बोल रहे हो आप, मैं आत्मा आता हूं ऐसा तो नहीं बोलते। अच्छा देखो ना, जो चीज बदलती रहे यही व्यभिचार का लक्षण है। जो कभी मैं होता है वही कभी मेरा भी हो जाता है। मैं बीमार हूं जब आप बोल रहे हो किसको लेकर के? शरीर मन आदि को लेकर ही बोल रहे हो। मैं बीमार हूं, वहां आत्मा तो है ही नहीं, और शरीर का भी नाम आपने नहीं लिया अभी, आपने सीधा बोल दिया मैं बीमार हूं। थोड़ी देर के बाद क्या बोल रहे हो? मेरा शरीर ठीक नहीं है। तो जो मैं मेरा बन जाए और जो मेरा मैं कह करके बोला जाए वो आत्मा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? अरे आप लोग नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? आध्यात्मिक केंद्र है पूरा, अध्यात्म के जो ये स्पिरिचुअल सेंटर कह लो, मेन पॉइंट, सवेरे सवेरे 7:30 बजे आप लोग बैठ गए आत्मा अनात्मा के विवेक करने के लिए, तो ये वेदांत लोग बाहर वाले समझ नहीं पाते क्या है ये। मैं कभी मेरा हो जाए और वही मेरा कभी मैं हो करके बोला जाए, ये तो आत्मा हो नहीं सकता। और जो आत्मा है वो कभी मेरा नहीं होता, वो हमेशा मैं ही रहता है। इतनी बात आप पकड़ के चलना, आगे फिर जैसा होगा देखते हैं। इदंकारास्पद और अहंकारास्पद दोनों को मिला करके ही इस लोक में हम लोग जो व्यवहार कर रहे हैं, ब्रह्म सूत्र में आया कि अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम, स्वाभाविक रूप से सबका ये व्यवहार चलता है। और यहां पर कह दिया जब अहंकारास्पद और इदंकारास्पद अनात्मा और आत्मा के घाल मेल होने से सर्वलोको संपूर्ण लोक में अहम अस्मि इति प्रत्येति दुखम च अनुभवति। जब उसमें आप अहंकार करते हो फिर सकलो हम बिकलो हम आदि सारे व्यवहार होने लगते हैं, दुख का अनुभव होता है। तेना ज्ञात ज्ञापकत्वात् निष्प्रयोजनत्वाच्च आत्मतत्व प्रतिपादनम व्यर्थम इति चेत, यदि ऐसा हो जाए तो जो बात पहले से ही ज्ञात हो उसी बात को यदि शास्त्र बतावे तो वह अनुवाद माना जाता है। याद रखना, जो बात पहले से ही मालूम हो अथवा जिस बात को बताने के लिए शास्त्र की आवश्यकता न हो, एक गिलास पानी पियोगे अथवा पानी पीने से प्यास बुझती है, ये सबको मालूम है, क्या कहोगे इसके लिए 10 श्लोक ही पढ़ना पड़ेगा। तो जब एक गिलास पानी पीने से प्यास बुझती है, वही बात यदि शास्त्र बतावे तो अनुवाद हो जाएगा। शास्त्र का लक्षण क्या है? अज्ञात ज्ञापक, अज्ञात का जो ज्ञापन करे, अज्ञात बात को जो बतावे, जो बात पहले से ज्ञात हो ज्ञाती हो गई, जो ज्ञात रहे उसका नाम अज्ञात है। शास्त्र ऐसे देखो तो मीमांसक लोग भी शास्त्र का ही प्रमाण मानते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि शास्त्र से तो केवल आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, जितने भी आमनाय हैं वेद हैं ये सब के सब क्रियार्थक हैं, क्रिया को बताने वाले, कर्म करने के लिए बताते हैं। वेदांत भी शास्त्र मानता है, लेकिन वेदांत कहता है शास्त्र केवल क्रिया करने के लिए नहीं कहता, शास्त्र तो कहता है कि अपने को जानो, ये भी कहता है। इसी को लेके पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का भेद हो गया। ब्रह्मसूत्र में शुरू में ही जब चतुसूत्री आप पढ़ेंगे ना, तो वहां ज्यादा पूर्व मीमांसक के साथ ही शास्त्रार्थ है। जब भी ये वेदांत प्रारंभ होता है तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि शास्त्र प्रारंभ किया जाए या न किया जाए, शास्त्र की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि आगे तो इसको पढ़ना ही है। तो आगे जाकर के यदि कोई कहे कि इतने पढ़ने की क्या जरूरत है, उसके लिए पहले इसका समाधान कर दिया जाता है, जो ये प्रश्न ही न रह जाए। शास्त्र की आवश्यकता है, क्यों है तो इसलिए है, ये बताना जरूरी होता है। शंसनाद शास्त्रम, जो शंसन करे शासन करे, शास्त्र कैसा शासन करता, हाथ में डंडा लेके तो शासन नहीं करता कि ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, पूर्व मीमांसक बोल रहे हैं कि जितने भी आमनाय हैं मतलब वेद हैं, वेद के अंदर जो भी मंत्र आदि है ये सब क्रियार्थत्वात्, क्रियार्थक होने से तो ठीक है, और यदि उस क्रियार्थक को सिद्ध नहीं करते तो अनर्थक्यम, वो अनर्थक है, निरर्थक है, उस शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। ये शास्त्र के अर्थ को समझना भी बहुत जरूरी है। आप लोग शास्त्रार्थ जानते हो ना, एक तो बनारस में शास्त्रार्थ होता है, वो शास्त्रार्थ तो समझो, वो लोग संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी समझने वाले को पता नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं, चाहे वो ईश्वर सिद्धि का शास्त्रार्थ हो, ब्रह्म सत्य है जगन मिथ्या है तो कैसे इसका शास्त्रार्थ हो। संस्कृत में वाग युद्ध होता है आपस में, विद्वान ब्राह्मण पंडितों का जो शास्त्रार्थ उसको भी एक शास्त्रार्थ बोलते हैं। और वास्तव में शास्त्रों के अर्थ जो प्रयोजन है, जो अभिप्राय है, वो है शास्त्रार्थ। केवल आपका वाग युद्ध हुआ और अभिप्राय नहीं निकला तो क्या समझ में आएगा। तो यहां पर आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम्, प्रसंग को देख करके यदि नहीं समझ पाएंगे तो कई बार उस शास्त्रार्थ को न समझ करके हम अनर्थ की प्राप्ति करने लग जाते हैं। अनर्थ की प्राप्ति न हो इसके लिए भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो वही बात आ जाती है, हम बार बार सुना देते हैं, थोड़ा हंसी भी आती है और बात सही भी है। एक छोटे छोटे वाक्य में हम उलझ जाते हैं। एक कोई बच्चा था, स्कूल में पढ़ने गया होगा, तो मास्टर ने पढ़ाना शुरू किया, बोले माय हेड। क्या होता है माय हेड मतलब? तो जो पढ़ा रहा है उसका सिर माना जाए या जो पढ़ रहा है उसका सिर माना जाए, ये पहले अर्थ निकालो। मास्टर बोल रहा है माय हेड मतलब मेरा सिर, और पढ़ा रहे किसको? बच्चे को। वो क्या बोलेगा? मेरा सिर। तो बच्चे समझ नहीं पाए, बच्चे ने सोचा माय हेड मतलब मास्टर का सिर। तो मास्टर पढ़ा रहा था बार बार माय हेड मतलब मेरा सिर, माय हेड मतलब मेरा सिर। तो बच्चे ने समझ लिया माय हेड मतलब मास्टर का सिर। घर में आया, माय हेड मतलब मास्टर का सिर। खूब हिल हिल के पढ़ रहा था, स्पेलिंग याद कर रहा था, एम वाई माई एच ई ए डी हेड, माय हेड, माय हेड मतलब मास्टर का सिर। उसके पिता ने सुना, बोले बेटा ये क्या पढ़ रहा है तू? अरे माय हेड मतलब मेरा सिर होता है। अब वो कंफ्यूज हो गया, भ्रम में पड़ गया कि माय हेड मतलब पिताजी का सिर होता होगा। अब फिर वैसे पढ़ना शुरू किया, स्पेलिंग भी रटे और साथ में बोले माय हेड मतलब पिताजी का सिर। स्कूल गया तो मास्टर ने कहा अरे माय हेड मतलब मेरा सिर। वहां बोल रहा है पिताजी का सिर, घर में बोल रहा है मास्टर का सिर। तो उसने ये अर्थ निकाला माय हेड मतलब घर में पिताजी का सिर, माय हेड मतलब स्कूल में मास्टर का सिर। लेकिन न तो पिता का सिर हो सकता है, न मास्टर का सिर हो सकता है। अब होता तो अपना ही है, लेकिन नहीं समझ पाने से अनर्थक्यम अतदर्थानाम, वेद के मंत्रों का और वेद का अभिप्राय देखा जाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जब चारों चीजों का एक साथ प्रयोग होता है उसको तो बोल देते हैं पूरा शास्त्र। और जब उसमें किसी वेदांत शास्त्र है, वेदांत शास्त्र में क्रम से बता दिया, कर्म है, उपासना है, फिर ज्ञान है, ये भी वेदांत में ही बताते हैं, प्रक्रियाबद्ध सृष्टि प्रक्रिया लय प्रक्रिया। लेकिन जब आप ये दश श्लोकी आदि पढ़ोगे अथवा मांडूक उपनिषद पढ़ोगे, मांडूक उपनिषद में केवल ओमकार को प्रतीक बना करके ही परमात्मा का प्रतिपादन किया और वो केवल मोक्ष की बात करते हैं, धर्म अर्थ और काम का वहां प्रतिपादन नहीं है। तो ऐसे चार पुरुषार्थों में केवल एक चीज को जो बतावे वही प्रकरण ग्रंथ हो जाते हैं। शास्त्र के एक बात को जो बतावे, शास्त्र तो है लेकिन क्या है, वो प्रकरण ग्रंथ है जो केवल मोक्ष के बारे में ही बतलाते हैं। ये भी ये सब प्रकरण ग्रंथ में आते हैं। प्रकरणाष्टक एक पुस्तक भी है, उसमें आठ प्रकरण ग्रंथों का एक साथ समावेश किया है। वेद के अभिप्राय जहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष में, मूल रूप से वेद में धर्म और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया, लेकिन पूर्व मीमांसक धर्म प्रधान होने से वह क्रियार्थक मानते हैं संपूर्ण वेद के मंत्रों को। लेकिन वेदांती जो बोलते हैं कहते नहीं, क्रिया तो करनी है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन वेद का अभिप्राय है परमात्मा के बोध कराने में। इसको लेकर के शास्त्रार्थ प्रारंभ होता है। तो शास्त्र का जो प्रयोजन है, ज्ञात ज्ञापकत्वात्, यदि वह ज्ञात ज्ञापक हो तो क्या हो जाएगा, निष्प्रयोजनत्वाच्च। शास्त्र तो अज्ञात ज्ञापक है। अब देखो अज्ञात ज्ञापक कैसे है, उससे पहले आप हम लोग जो अज्ञात की बात करते वो समझ लो। आप भी बोलते हो कि मैं चलता हूं, और एक सामान्य व्यक्ति जिसने अभी वेदांत श्रवण नहीं किया वो भी क्या बोलेगा, मैं चलता हूं। लेकिन जब आपने वेदांत श्रवण कर लिया उसके बाद जो आप बोलोगे मैं चलता हूं, और जिसने अभी वेदांत श्रवण नहीं किया वो बोलेगा जब मैं चलता हूं, तो दोनों में क्या अंतर होगा? बस इतनी सी तो बात है। अर्थात एक तो सामान्य ज्ञान है जो सब लोग बोलते हैं, मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद एक विशेष ज्ञान होता है जो अभी तक खंडित खंडित ज्ञान था, अब वह अखंड रूप से निश्चय हो गया कि मैं तो न आना है न जाना है, और उपाधि को लेकर के सब कुछ स्वीकार है, उसमें तो स्वीकृति है ही ना। इसलिए ज्ञात ज्ञापक और निष्प्रयोजनत्व को लेकर के आत्म तत्व का प्रतिपादन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी के ऊपर थोड़ा और भी विचार फिर कल करेंगे। बीच में हम थोड़ा दृष्टांत आदि अभी नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को थोड़ा जोर भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सरल हो जाएगा। अब तरणिका है ये शुरुआत। हरिओम।